सभी वैम्पायरों का अंत हो चुका था। वो साया भी अपना काम करके जा चुका था, पर वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे खड़े निहाल ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो भी आन्या की आवाज़ सुनकर इस तरफ आया था, पर जब तक वो यहां पहुंचा अन्वय पहले ही आन्या को अपनी बाहों में थामे हुए था। इससे उसके तन बदन में आग लग गई। वो वहीं पेड़ के पीछे छिप गया और गुस्से से सब देखने लगा। जैसे ही सब वैम्पायर मारे गए, वो भी हवा की तरह वहां से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ सबको खत्म करने के बाद अन्वय आन्या की तरफ पलटा। आन्या ने उसे देखा, पर इस बार वो पहली बार की तरह बेहोश नहीं हुई और एकटक उसकी नीली आंखों को देखने लगी। अन्वय ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर इंसानी रूप में बदल गया। फिर आन्या के पास आकर बोला, घर चलो। तुम इंसान नहीं, वैम्पायर हो, उन सब में से एक हो जो अभी मुझे मारने आए थे? आन्या ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए सवाल किया। अन्वय ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कहा, अभी अभी जो तुमने देखा उसके बाद भी तुम्हें मुझे लेकर कोई शक है? अगर तुम वैम्पायर हो और इन्हीं में से एक हो तो इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? वैम्पायर तो इंसानों का खून पीकर उन्हें मार देते हैं ना? आन्या ने अपनी प्यारी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखा। अन्वय ने उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगा। मैं वैम्पायर जरूर हूं, पर उनमें से नहीं हूं जो अभी तुम्हें मारने के लिए आए थे। मैं इंसानों को मारने का शौक नहीं रखता, बल्कि आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। ओ, मतलब तुम अच्छे वाले वैम्पायर हो, आन्या ने उसके गाल को खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। इससे अन्वय आंखें बड़ी बड़ी करके उसको हैरानी से देखता रह गया। उसका रिएक्शन देखकर आन्या ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो? जैसे दुनिया में कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही तुम्हारी दुनिया में भी अच्छे और बुरे वैम्पायर होते होंगे ना? जो मुझे मारने आए और जिन्हें तुमने मार दिया, वो सब बुरे वैम्पायर थे, तो तुमने मुझे उनसे बचाया, इसका मतलब तुम अच्छे वैम्पायर हुए ना? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अन्वय ने उसकी बात सुनी तो आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए सवाल किया और उसके हाथ को अपने गाल पर से हटा दिया। पर आन्या ने अब भी मुस्कुराकर जवाब दिया, डर और तुमसे? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना कि तुम वो पहले और आखिरी शख्स हो जिसके साथ मैं महफूज महसूस करती हूँ, फिर तुम्हारे साथ या तुमसे डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे क्या तुम फिर से वैम्पायर बन सकते हो? मुझे ना तुम्हारी नीली आंखों को देखना है। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है, आन्या ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय को आन्या से जंगल में हुई मुलाकात याद आ गई, तो उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? जब तुम यहाँ हो तो ये जगह सेफ ही सेफ है मेरे लिए, आन्या ने उसके कलाई पकड़ते हुए कहा। पर अन्वय ने अगले ही पल उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोला, अब तो जान गई हो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, तो दूर रहूँ मुझसे। ऐसे कैसे दूर रहूँ? दिल चुराया है तुमने मेरा, अब पीछे नहीं हट सकते, समझे मिस्टर अकड़ू? आन्या के सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसको घूरने लगी। वहीं अन्वय ने भी उसको घूरते हुए देखा, फिर गुस्से से धमकाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी इन बिना सर पैर की बातों को सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। चुपचाप चलो वरना यहीं जंगल में छोड़ जाऊंगा। अभी तो मैंने बचा लिया, पर अगली बार किसी न किसी का शिकार बन ही जाओगी, पर मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने। अगर फिर से उनसे मिलने का मन हो तो चलाती रहो अपनी जुबान और बुला लो उन्हें अपने पास। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसको वो पल याद आ गया जब उसके इर्द गिर्द वैम्पायर ही वैम्पायर थे और सभी उसको अपना शिकार बनाने के लिए उसके तरफ बढ़ रहे थे। डर और घबराहट से आन्या को पसीना आने लगा। उसने भागकर जाकर अन्वय की बाँह पकड़ते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, पर अगर मैं किसी और वैम्पायर के हाथ लग गई तो वो मेरा सारा खून पीकर मुझे बेजान बनाकर फेंक देगा, और अभी मुझे मरना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अन्वय ने एक शब्द नहीं कहा, बस उससे अपनी बाँह छुड़ा ली और उसकी हथेली को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल हवा के तेज झोंके के साथ वो सीधा जाकर अन्वय की बाइक के पास पहुंचे। आन्या आंखें फाड़े कभी आसपास तो कभी उसे देखने लगी। अन्वय ने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठते हुए बोला, पीछे बैठो जल्दी वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हें। अन्वय ने एक बार फिर उसे धमकी दी तो आन्या झट से उसके पीछे बैठ गई और अन्वय ने बाइक स्टार्ट कर दी। आन्या कुछ देर उसके कंधे को थामे खामोशी से बैठी रही, फिर आगे की तरफ झुकते हुए बोली, अन्वय तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम घर पर थी, फिर कौन तुम्हें यहाँ लाया था? बदले में अन्वय ने ही उससे सवाल कर लिया तो आन्या ने गालों को फुलाते हुए बताना शुरू किया, तुम्हारी वजह से आज मैं उन वैम्पायरों का शिकार बनने वाली थी। उसकी बात सुनकर अन्वय ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और उसके तरफ सर घुमाते हुए हैरानी से बोला, मेरे वजह से कैसे? अरे अगर तुम मुझसे खुद से दूर करने की बात नहीं कहते तो मैं सिमरन से बात नहीं करती, फिर उसके धोखे में मैं बिना कुछ पूछे दरवाजा नहीं खोलती और निहाल मुझे लेकर नहीं जा पाता, मुझे उससे बचने के लिए जंगल में नहीं भागना पड़ता, और अगर मैं जंगल में नहीं जाती तो वो वैम्पायर मेरा शिकार करने नहीं आते, तो सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ ना। आन्या गुस्से में उसको घूरने लगी, तो बदले में अन्वय ने भी उसको घूरते हुए कहा, तभी कहता हूँ दूर रहा करो मुझसे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मैं नहीं जाऊंगी तुमसे दूर, मौत आती है तो आई, मैं तुम्हारी बाहों में खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगी, पर तुमसे दूर होकर नहीं जीना मुझे। पागल मत बनो आन्या, तुम्हें मेरी आदत हो गई है, कुछ दिन दूर रहोगी मुझसे तो भूल जाओगी सब, इसीलिए अब अपनी बकवास बंद करो, उसने आन्या को डांटते हुए चुप करवा दिया। आन्या भी चुप हो गई, पर उसने अपनी बाहों को अन्वय के सीने पर लपेटते हुए उसके पीठ से अपना सर टिका लिया। पहले तो अन्वय चौंक गया, फिर उसने खुद को सामान्य कर लिया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। आन्या भी खामोशी से बैठी रही। कुछ पौने घंटे बाद गाड़ी घर के आगे रुकी। सिमरन बेचैनी से गैलरी में चक्कर काट रही थी, उसके कानों में बाइक के रुकने की आवाज पड़ी तो वो भागकर नीचे आ गई। गेट से अंदर आते अन्वय को आन्या पर जब उसकी नजरें पड़ी तो उसकी आंखें छलक गईं। आन्या ने आज बंद गले का सूट पहना हुआ था, दुपट्टा कमरे में ही रह गया था। निहाल के साथ हुई हाथापाई में बाल बिखर गए थे, माथे पर लगा खून सूख चुका था। सिमरन भागकर जाकर उसके गले से लग गई। पहले तो आन्या चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, कहाँ चली गई थी तू, बताए घर का बिखरा सामान देखकर मैं कितना डर गई थी। सिमरन ने उससे अलग होते हुए नाराजगी से मुंह फुलाया, चिंता उसके चेहरे पर झलक रही थी। अब आन्या कुछ कहती उससे पहले ही अन्वय ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो होना था हो गया, अब उसके बारे में बात करके दुखी या परेशान होने का कोई फायदा नहीं है।